اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، پروگرام قیام سے قیام تک میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں موضوع بحث ہے سلیمان ابن سورد خزائی کی شخصیت، جن کا تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ملتا ہے. اس شخصیت پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مولانا رضوان علوی صاحب. آئیے جناب سلیمان ابن سورد خزائی کی شخصیت کے بارے میں مولانا سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب.
السلام ورحمۃ اللہ.
ایک شخصیت ہیں، بڑا نام ملتا ہے قیام کربلا کے بعد، ایک دوسرے قیام کے اور ایک اور تحریک کے، ایک بڑی تحریک کے سرکردہ رہنما سلیمان ابن سورد خزائی کی شخصیت. اس کے علاوہ بھی ہمیں تاریخ میں ان کا کوئی تعارف نظر آتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. سلیمان سورد خزائی کا تعلق اصحاب خطبی مرتبت میں سے ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام یسار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سلیمان رکھا. خلافت ثانیہ میں کہ جب کوفے کی بنیاد ٹھہرائی گئی اور کوفے کو ایک چھاونی کی حیثیت دی گئی، تو اس وقت یہ سلیمان سورد خزائی کوفے آتے ہیں اور کوفے میں ایک برجستہ شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں.
صحابی رسول ہیں،
صحابی رسول کا عنوان بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، اور خلافت ثانیہ میں غالباً کوئی عہدہ بھی ان کے پاس موجود ہے. خلافت ثالثہ میں جب کوفے کے اندر ایک شورش برپا کی ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں مالک اشتر پیش نظر آتے ہیں حکومت کے خلاف، تو یہ سلیمان سورد خزائی ہی ہیں کہ جو خلافت ثالثہ میں خلیفہ ثالث کو ایک خط لکھتے ہیں کہ اگر تم نے ان شورشیوں کو نہیں دبایا یا اس تحریک کو نہیں دبایا تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، لہٰذا تم کوفے کو بچاؤ. یہ خط خلیفہ ثالث کے پاس پہنچتا ہے اور خلیفہ ثالث ان لوگوں کو کہ جو اس تحریک کے یا یوں کہہ لیجیے جو اس شورش کے سرکردہ تھے، ان کو امیر شام کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. بہرحال وہ لوگ وہاں پر بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور استقامت کے ساتھ امیر شام کا مقابلہ کرتے ہیں کہ امیر شام بھی اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کو واپس کوفے بھیج دیا جائے. بہرحال سلیمان سورد خزائی ایک برچستہ شخصیت ہیں اور ہمیں ان کی شخصیت امیر المومنین کے زمانے میں، کہ جب امیر المومنین کی بیعت لی گئی اور بیعت ابھی تمام ہی نہ ہوئی تھی کہ فتنہ جمل نے سر اٹھایا. اس فتنے کو کچلنے کے لیے جب امیر المومنین نے کوفے سے فوج طلب کی ہے کہ آؤ بھائی ہماری مدد کے لیے ہماری فوج کے ساتھ مل جاؤ تاکہ فتنہ جمل کو ختم کیا جا سکے، اور پھر وہاں پر ابو موسیٰ اشعری جیسے افراد وہاں موجود ہیں اور بہرحال ایک دسیسہ ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے کہ جس کی زد میں سلیمان سورد خزائی آ جاتے ہیں اور جمل نہیں پہنچ پاتے ہیں، جنگ جمل میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں. امیر المومنین فتنے کو کچلنے کے بعد کوفے تشریف لاتے ہیں. دارالحکومت کوفہ منتقل ہو چکا ہے، آپ کوفے کو اپنا پائے خلافت بنانا چاہتے ہیں، اور آپ جب کوفہ تشریف لاتے ہیں تو یہ استقبال کے لیے دروازے کوفہ پر پہنچتے ہیں امیر المومنین کے استقبال کے لیے. تو امیر المومنین ان کی اس حرکت سے بہت ناخوش ہوتے ہیں. کون سی حرکت؟ کہ جو انہوں نے جمل میں شریک ہو کر نہ کی،
یعنی شکوہ کرتے ہیں،
شکوہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ تم سے ہمیں یہ امید نہ تھی، تم تو دوستدار تھے ہمارے، تم تو ہمارے حبدار تھے، ہمارے دعوے دار، محبت کے دعوے دار تھے. سلیمان سورد خزائی کو برا لگتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے انہوں نے ڈانٹا ہے اور مجھ سے غصہ کیا ہے. بہرحال یہ پہنچتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں اور امام سے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کا حبدار ہوں، میں تو آپ کا دوستدار ہوں، اور میں تو آپ کا شیعہ ہوں،
چاہنے والا ہوں،
اور امیر المومنین نے میرے ساتھ یہ کیا. تو امیر المومنین جناب امام حسن مجتبیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے سلیمان تم سے یہ امید نہ تھی، तुम हमारे चाहने वाले थे, तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम जमल में हमारे साथ शरीक ना हो। बहरहाल जब ये मसला खत्म होता है और सिफीन की जंग जब शुरू होती है, तो सुलेमान सुरद खजाई अपनी वफादारी को साबित करने के लिए, अपनी जान निसारी को साबित करने के लिए अमीर मोमिनीन अली अबन अबी तालिब अलैहि सलातु व सलाम से वफादारी को साबित करने के लिए उस जंग में शरीक होते हैं और पयादा की सरबराई करते हैं, और बड़ी बेजिगरी से सुलेमान जो है यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ
यानी
रहे हैं।
इतनी बड़ी शख्सियत ये कूफे की हैं कि इनका शिरकत ना करना,
बहरहाल एक असर असर डाला
उसका
उसने।
नोटिस लिया जाता
जी
है
जी
और मौला इनसे शिकायत भी करते
जी
हैं,
जी
और इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी तशखीस नहीं दे पा रहे हैं कि किस मामले में
क्या
मुझे
करना
क्या
चाहिए, क्या
किरदार अदा
किरदार
करना
करना
चाहिए।
चाहिए। सुलेमान सुरद खजाई और इन जैसे अफराद का मसला ही यही है, हमें यही मिलता है। आप देखिए कि जब अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, तो शहादत के बाद इमाम हसन तक खिलाफत पहुंची, और जब इमाम हसन तक खिलाफत पहुंची और बात सुलह तक पहुंची, तो यही सुलेमान सुरद खजाई हैं कि जो मुखालफत कर रहे हैं इमाम हसन की, और वो कलिमात के जिनको कहने से इंसान का दिल लरज जाता है और जबान कासिर है, उन अल्फाज को अदा करने से सुलेमान सुरद खजाई ने वो अल्फाज वहाँ पर कहे हैं इमाम हसन को।
क्या अल्फाज, अगर आप थोड़ी सी इसके बारे में वजाहत करें।
ऐ मोमिनीन को जलील करने वाले,
यानी ये शिकवा कर रहे हैं
ये
कि क्यों
शिकवा कर
तुमने
रहे हैं
कदम
कि
नहीं
जी,
उठाया और आपको कदम उठाना चाहिए था।
यानी सुलह है इमाम हसन से नाला नजर आ रहे हैं, कहते हैं ये क्यों किया आपने। और ये कब पैदा होता है ये जज्बा, ये उस वक्त हमें नजर आता है कि जब हम अपने आप को भी कुछ समझें और इमाम को एक मकाम पर देखें, यानी इमाम को और अपने आप को
यानी विलायत की मार्फत नजर नहीं आ रही ना यहाँ पे
विलायत
कि
मदारी
विलायत
नजर,
क्या चीज़। हाँ विलायत
विलायत नहीं
मदारी
आ रही,
नजर नहीं आ रही।
इताअत नजर नहीं आ रही है, वो इताअत की जो मीसा में है।
अगर ये सिर्फ विलायत की मार्फत और उसकी पहचान इंसान के पास हो, तो फिर वो अतात और इश्क और मवद्दत और मोहब्बत और फरमा
फिर
बरदारी
वो
के,
कुछ
तो
कहता नहीं है,
उसके
बस
बारे में वो सारे दर्जात तो बात के हैं।
बात क्या है।
अव्वल
सबसे
ये कि
अहम
इंसान
तरीन,
विलायत को समझे।
जी अहम तरीन चीज ये है कि वो विलायत को समझे। और यही हम देखते हैं कि जब मुआविया इस दुनिया से रुखसत होता है, उस वक्त सबसे पहली मीटिंग कूफे के अंदर सुलेमान सुरद खजाई के घर में होती है, और जब यजीद की बैत ली गई और ये सारे पूरी दास्तान हमारे सामने मौजूद है। सुलेमान सुरद खजाई कहते हैं लोगों से कि भाई इमाम हुसैन मक्के से मदीने से निकल चुके हैं, मक्के आ चुके हैं, अब हमें चाहिए कि उनकी हम उनका हम साथ दें। ये सुलेमान सुरद खजाई के अल्फाज हैं कि अब हमें चाहिए कि उनका हम साथ दें, लिहाजा हम खत लिखकर उनको अपने यहाँ बुलाएंगे। और पहली मर्तबा खत लिखा जाता है, सुलेमान सुरद खजाई उस खत को लिखते हैं और वहां पर मोहर लगाते हैं। और जब ये सारे सब कुछ काम हो चुका, और फिर हम देखते हैं कि जब हजरत मुस्लिम कूफे तशरीफ ला चुके हैं, तो सुलेमान सुरद खजाई का कहीं कोई पता नहीं है,
कोई किरदार नजर
कोई
नहीं आता
किरदार नजर
उसका।
नहीं आ रहा वहां पर। हमें हानि इब्न अरवा नजर आते हैं और दूसरे जय्यद और बुजुर्ग शिया के जिन्होंने नुकसान उठाया वो नजर आते हैं। इब्ने जियाद ने जो आकर वहां पर साजिश की है, इतनी घनौनी साजिश थी कि कोई उस साजिश से बच ना सका, उसके धोखे से कोई और कोई बच ना सका। यानी खास खासान खास जो है वो भी इसकी साजिश में आ गए, जिसमें सुलेमान सुरद खजाई भी है। उस कयाम से कि जो अमीर जो जनाब मुस्लिम ने कूफे के दारुल अमारा पर चढ़ाई करके किया था, वहां हमें सलमान सुरद खजाई नजर नहीं आते। और क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने कूफे में मनादी करा दी थी कि जो भी हुसैन का नाम लेगा, हुसैन का साथ देने का इरादा करेगा, जो हुसैन का साथ देगा उसका घर जला दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके बीवी बच्चों को कैद कर दिया जाएगा, उसका माल जब्त कर दिया जाएगा। बहरहाल एक मार्शल्ला तो टाइप का एक निज़ाम उसने वहां
हाँ,
पर,
और उसमें कामयाब भी होता
और
हुआ
उसमें
नजर आता
कामयाब,
है।
बहरहाल वो एक अलग गुफ्तगू है हमारी। लेकिन हम जब देखते हैं वो, जब उसने तमाम रास्ते बंद कर दिए, तमाम रास्ते बंद कर दिए, कोई भी रास्ता करबला की तरफ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा उसको हम बंद कर देंगे, और जो भी यहां से जाएगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये बहाना बनाकर सुलेमान सिरद सुरद खजाई और दूसरे लोग जो हैं वो बहाना तराशते हैं इस बात से कि कूफे का रास्ता बंद है, करबला जा नहीं सकते, इमाम की अब मदद नहीं हो सकती, वो अपने घर में दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई तहरीक हमें नज़र नहीं है। जबकि हम ये देखते हैं, हमारे पास दो तरह की रिवायत हैं जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के बारे में, भाई वो भी तो एक इसी कूफे के रहने वाले हैं।
अच्छा, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू सुलेमान इब्ने सुरत ख़ज़ाई की शख्सियत है। हमारी गुफ्तगू मौलाना रिजवान अलवी साहब से उनकी शख्सियत और उनके किरदार के बारे में चल रही है। आइए अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, खतूत के इरसाल करने में भी जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें यही मिलता है कि सबसे पेश पेश शख्सियत और सबसे जो बुज़ुर्ग शख्सियत है, या आप ये कह लें कि वो
जस्ता
खतूत
जी
भेजने
जी जी
वालों के
जी
जो लीडर और रहबर हैं
जी
वो सुलेमान है।
जी जी
यानी रसूल के ज़माने में आ जाते हैं कूफे, खलीफे
सानी के
सानी
जमाने
के ज़माने में आ जाते हैं कूफे, खुद रसूल के सहाबी हैं, और तीसरे खलीफे के ज़माने में उस खलीफा को ख़त लिख
जी
के
जी जी जी
अपनी एक तरह से वफादारी का ऐलान करते हुए नज़र
जी
आते
जी
हैं। चौथे खलीफा यानी हज़रत अमीर अलमोमिनीन के खिलाफत में फिर उनका साथ नहीं देते।
जी जी
फिर जब अमीर अलमोमिनीन कूफे आ रहे हैं तो वहाँ कूफे में उनके
इस्तकबाल के लिए
इस्तकबाल के लिए पहुँचे हैं।
जी जी जी
उसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जब यजीद तख्त पे बैठा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखने में भी,
पेश पेश है
यानी कहीं पर भी शख्सियत में हमें ठहराव नज़र नहीं आ रहा कि किसी एक सिमत को, एक रुख को, या
जी
एक किसी एक कश्ती में सवार नज़र नहीं आ रहे कि हाँ मैंने ये रुख अपना लिया है,
जी जी
मैंने इस सिमत का इंतखाब कर
जी
लिया, अब
जी
मुझे इसके पीछे चलना है चाहे मेरी जान क्यों ना चली
चल
जाए।
चल चल
यानी अगर विलायत की रस्सी को थाम लिया, या खुदा की रस्सी को, या विलायत की रस्सी को थामने की बात हुई, तो वो नहीं, वहां पे भी नजर नहीं आते
जी जी जी
कि कहीं पे इकरार कर रहे हैं और कहीं पे इनकार कर रहे हैं।
असल मसला ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अपने आप को इमाम के मद्द मुकाबिल ठहराया हुआ है, यानी मैं सुलेमान सुरद खजाई हूं और ये अमीर उलमोमिन है, इनकी सियासत ये कहती है, मेरा तजुर्बा ये कहता है, ये चाहते हैं मैं ये चाहता हूं। यानी जब अनानियत आ जाए, अनानियत बमाने तकबर नहीं बल्कि मैं भी कुछ हूं अमीर उलमोमिन यानी विलायत
अब
के सामने,
बहरहाल सहाबी रसूल हैं और एक काफी उम्र गुजार
वो
चुके हैं,
गुजार
अपनी
चुके हैं, बहरहाल
सिनरसीदा
एक उनका
शख्सियत है।
उनका सब सब कुछ मौजूद, लेकिन अपने आप को उस मदार से नहीं निकाल पा रहे हैं। हम ये देखते हैं, देखिए जहमत भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में नतीजा कुछ नहीं है। आखिर में जब अपने वक्त को कैश करने का वक्त आता है, अपने आप को कैश करने का वक्त आता है, सही तौर पर वक्त को पहचानने का वक्त आता है, तो वहां ये फेल होते हुए नजर आते हैं।
ये कमजोरी हमें नजर आती
ये
है।
कमजोरी हमें इनके किरदार में नजर आती है कि किस तरीके से, देखिए मेहनत कर रहे हैं, आसान काम नहीं है लोगों को जमा करना, दर्द रखते हैं यजीद के खिलाफ खिलाफ बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन के लिए दर्द रखते हैं, अमीर उलमोमिनीन के साथ जंग भी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ठीक है, लेकिन क्यों कि जब वक्त आता है इस चीज को, अपने आप को, मैं ये कहूँ आसान अल्फाज में ही, कि अपने आप को कैश कराने का वक्त आता है, वक्त
यानी
को
सही मौके पे सही फैसला नहीं
सही
कर
फैसला
पाते।
नहीं कर पा रहे हैं, फकत और फकत विलायत की ना होने की वजह से, सिर्फ विलायत
और
की
इस
ना होने,
कुव्वत का फुकदान
इस
है
कुव्वत का
अब
फुकदान है
शख्सियत
इनके
में
अंदर,
उनकी।
इस शख्सियत के अंदर। मैंने आपसे अर्ज किया कि मेहनत कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है मेहनत में, आप देखिए खत भी भेजे, सब कुछ हुआ, और फिर आप देखिए कि यही वो शख्स है सुलेमान सुरद खजाई बादस करबला पशिमान है अपने किए पर, अपने इस जोफ को महसूस कर रहे हैं कि हाँ अब मालूम चला कि ये इनके अंदर ये जोफ था, इन्होंने गलती की। तो हमें एक तवाबीन का बड़ा गिरोह नजर आता है कि जिसकी सरबराही सुलेमान सुरद खजाई कर रहे हैं, और पहली मरतबा तारीख में या सारात अल हुसैन का नारा लगाने वाले यही सुलेमान सुरद खजाई हैं, पशिमान हैं, तौबा करना चाहते हैं कि उनसे गलती हो गई, कि उन्होंने नबी के नवासे का साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर हमें वो तवाबीन की वो हरकत, वो तहरीक कि जो बड़ी बहुत बड़ी तहरीक है तारीख के अंदर, उससे इतने बड़े काम अंजाम दिए, बहुत कारनामे अंजाम दिए, वो हमें तहरीक नज़र आती है कि जिसके सरबरा यही सुलेमान सुरादे खजाई
अच्छा,
हैं।
इस पूरी तहरीक में जो चीज़ हमें तारीख में जो हमने देखी कि कहीं पर भी हज़रत सुलेमान डगमगाते हुए नज़र नहीं आ रहे।
हाँ, क्योंकि अब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं अपनी, क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो गया उनको, अब उस तजब्जुब से जिसका वो पहले शिकार थे, अब वो निकल चुके हैं, अब मुशविश नहीं है, समझ गए गलती हो रही, गलती हुई है हमसे, हमें ये नहीं करना चाहिए था और हमें इसका जिबरान करना चाहिए। किस तरीके से होगा? दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान इमाम हुसैन, कातलान इमाम हुसैन का से मुकाबला करके उनको कत्ल करेंगे और खुद कत्ल हो जाएंगे। यानी अपने आप को अब बस अब खून में रंगीन करना है, शहादत के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है अपने आप को बख्शवाने का। अब मैं एक नुक्ता यहाँ अर्ज करता चलूँ, बड़ा खूबसूरत नुक्ता, आज के दौर की जो अक्कासी भी कर रहा है और जो हमारे लिए बायस इबरत, क्योंकि तारीख बहरहाल हमारे लिए इबरत है, ये वाकए करबला हमारे लिए इबरत है, उन शियों के लिए इबरत है कि जिन्होंने वक्त पे साथ
नहीं
नहीं
दिया।
दिया। क्या देखिए, अगर ये तवाबीन कि जिनकी तादाद 4,000 थी, और हमें तारीख में मिलता है कि ये 4,000 जो ऐनुल वर्दा के अंदर जो ये पहुंचे हैं लड़ने के लिए, तो ये 4,000 की तादाद नहीं, 2,000 तादाद थी वहां जो लड़ने पहुंचे, वैसे 4,000 थी इनकी तादाद, लेकिन वहां लड़ने के लिए सिर्फ 2,000 पहुंचे हैं, इतनी बेजिगरी के साथ लड़े हैं कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना यानी निडर होकर बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया है। अगर यही लोग करबला में मौजूद होते तो आज तारीख कुछ और कह रही होती,
नक्शा तब्दील
नक्शा
होता
तब्दील होता,
कयाम इमाम
कायाम
हुसैन
इमाम
अलैहि सलाम।
हुसैन अलैहि सलातु सलाम का, और वो सूरत हाल नजर नहीं आती। बहरहाल ये कहना कि ये हमारे लिए इबरत है, ये दुरुस्त है कि ये बहरहाल हम उस वक्त के जो शिया थे उनके लिए एक अदद इम्तिहान था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में आना और वहाँ शहीद हो जाना, ये हमारे लिए इम्तिहान था और आज हमारे लिए सबक है। क्या? क्योंकि आज हमारा इमाम हमारी आंखों से ओझल है, खुदा नहीं चाहता कि दूसरी करबला बने, खुदा इस बात पर आमादा नहीं है। लाजमी बात है, एक वली खुदा का कत्ल इतना आसान काम नहीं है, और वो भी एक ऐसा वली खुदा कि जो नबी का नवासा हो, खामिस आलिया, खुदा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये इम्तिहान था उन शियों का, ये इम्तिहान था उस वक्त के मुसलमानों का कि जो बेतरफ रह गए, ना इब्ने
यानी
ज़ियाद की तरफ
ना
आए
उस तरफ से ना इस
ना इस
तरफ से।
तरफ आए, जिससे इब्ने ज़ियाद को कोई नुकसान हुआ या ना हुआ, नबी के नवासे को नुकसान जरूर
जरूर
हुआ,
पहुंचा, इस्लाम को नुकसान
इस्लाम को
पहुंचा, दर
नुकसान
हकीकत
पहुंचा, दर हकीकत
दीन को
को।
नुकसान पहुंचा,
जी
है शरीयत को नुकसान
जी
पहुंचा।
तो इस गैबत के ज़माने में हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो करबला के तारीख से जो हमें नज़र आती है, वो ये कि हम अपने आप को आमादा करें उस अहम तरीन वक्त के लिए कि जब उस वजूद नाजनीन का जुहूर होगा, और
तब
यही
हमारा इम्तिहान
तब
होगा।
हमारा इम्तिहान है। क्या?
अच्छा, ये जो लफ्ज़ तवाबीन का इंतखाब जो हुआ तारीख में जो हमें मिलता है कि तवाबीन ने कयाम किया, तवाबीन यानी क्यों इस लफ्ज़ का
जैसे मैंने आपसे अर्ज
इंतखाब किया
किया
गया?
कि सलमान सुरद खजाई अब पशिमान है, ना सिर्फ सुलेमान सुरद खजाई, बहुत से नामवर शख्सियत जिन्होंने खतूत लिखे थे, बर्जस्ता थे, अपने आप को हुबदार अहले बैत कहते थे, अपने आप को शिया कहते थे, मुहिब अहले बैत कहते थे, आमादा थे सर कटाने पर, इमाम हुसैन की राह में इमाम हुसैन के नाम पर सर कटाने के लिए आमादा थे, लेकिन तजब्जुब का शिकार हो गए, मुशविश हो गए, टालमटोल का शिकार हो गए,
सही वक्त पे फैसला
सही
नहीं
वक्त
कर
पर
पाए।
फैसला ना कर पाए। अब जब ये सूरत हाल सामने आई कि नबी का नवासा, जहरा का नूर ऐन, अली का जिगर गोशा, करबला मोहल्ला में भूखा प्यासा अपने खानदान के साथ शहीद हो गया और उनके खानदान वालों को असीर करके शाम ले जाया गया, जब ये पूरा सिलसिला उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो अब उनसे रहा नहीं गया, वो समझ गए कि उनसे गलती हुई है और ये गलती बहुत संगीन है, लिहाजा अपने आप को तौबा के लिए आमादा किया और अपना नाम तवाबीन रखा। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उन्होंने नारा लगाया सारातिल हुसैन
अच्छा,
का।
ये नाम भी सुलेमान इब्न सूरत खजाई ने दिया
जी,
कि
तौबा,
तवाबीन
जी
है,
जी
हम
उन्होंने,
तौबा करने
हम
वाले।
तौबा करने वाले हैं और हम बहुत शदीद तौबा करने वाले
हाँ,
हैं।
इस तहरीक में क्या किरदार अदा करते हुए नज़र आए? एक तो हमें ये मिलता है कि हाँ, सरबरा थे इसके, लेकिन उसके अलावा क्या खसूसियात नज़र आती हैं हमें इस
अब
तहरीक के?
डगमगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अब पीछे की तरफ हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब चाहते ये हैं कि किसी तरीके से हम दुश्मन अहले बैत से मुकाबला करें और उनसे जाकर हम लड़ें, खुद भी शहीद हो जाएं और उनको हम इस दुनिया से रवाना कर दें, उनको फिनारे जहन्नम करें। ये, और क्योंकि सुलेमान सूरत खजाई बर्चस्ता शख्सियत है, बुजुर्ग आदमी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, मुकर्रर बेहतरीन है, अपनी तकरीरों से, अपने खिताब के जरिए से लोगों को इस तहरीक में शामिल होने के लिए आमादा कर रहे हैं। अब वो तजब्जुब खत्म हो गया है, अब बहुत अपने आप को इमाम के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल अपने आप को तवाबीन के उनवान से कि हम तवाबीन हैं, हमसे गलती हुई है, लिहाजा हम अपने आप को कुर्बान करते हैं।
यानी जो फैसला वो आशूरा के वक्त या क़याम
जो फैसला
या
रोज़े आशूर करना
करबला
चाहिए
के
था
मौके पे नहीं
उन्होंने
कर पाए,
उन्होंने 5 साल के
उसके
बाद
इजाले के लिए उन्होंने पाँच
जी
साल के बाद ये
ये
कदम उठाया
कदम उठाया और वहां पर फिर ये सब
और उसके
उन्होंने,
अंदर उनको शहादत भी मिली
उसके अंदर
और
जनाब सुलेमान जो है वो वहाँ पर शहीद हो गए और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। 80-85 साल का एक बूढ़ा इंसान जितनी बहादुरी से वहाँ लड़ा है, आप तारीख का मुताला कीजिए और हमारे नाज़रीन भी अगर चाहें तो तारीख का मुताला करें किस तरीके से ये वहाँ लड़े हैं। वाकई ने बेजिगरी और बहादुरी के साथ लड़ना कहलाता है, किस तरीके से वहाँ इब्ने ज़ियाद के उस लश्कर के साथ लड़े हैं।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज की हमारी। नाज़रीन कराम, इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हमारा SMS, ईमेल और टेलीफोन नंबर आपकी खिदमत में मौजूद है। हमें उम्मीद है कि आप अपनी आरा से, गुजारिशात से और जो सवालात आप यहाँ पर आने वाले उलमा कराम से पूछना चाहें, या तारीख के वो वाकयात या वो इसरार या वो सवालात जो अभी तक हमारे जहनों में गूंज रहे हैं, आपके जहनों में गूंज रहे हैं कि इस वाकये का सबब क्या था, इस सवाल का जवाब क्या है, वो सवालात, उन वाकयात के बारे में जो शुभात आपके जहनों में है, वो हमें इस SMS ईमेल एड्रेस पे या इस टेलीफोन नंबर पे SMS करें। इंशाल्लाह हम अपने मौजिज़ मेहमानाने गिरामी से आपके सवालात के जवाब ज़रूर हासिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।